ओम शांति। आज के कॉन्फ्रेंस इंटरेक्टिव सेशन में आप सभी महानुभावों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करती हूँ, कृपया पाइए। चेयरपर्सन बीके सविता दीदी, डॉक्टर सविता दीदी, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर एच के पंचाल, मिस्टर विपिन कुमार, मिस्टर चेष्मा सिंह, बीके कविता बहन और हमारे चेयरपर्सन मिस्टर एनडी जोशियारा। एक बार पुनः फिर से आपका स्वागत स्वागत स्वागत। मैं अपनी बहनों को आमंत्रित करती हूँ हमारे अतिथि का फूल और बैस से स्वागत करें। सविता दीदी, मिस्टर एच के पंचाल, डायरेक्टर ऑफ बॉयलर्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अहमदाबाद मिस्टर विपिन कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर एसीपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ मिस्टर शेषनाथ सिंह, साइंटिफिक ऑफिसर आरआरसीएसी इंदौर, बीके कविता बहन, कविता बहन राजयोगा टीचर पानीपत, मिस्टर एनडी जोशियारा फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ गुजरात हिम्मतनगर। इस सेशन की थीम है रीडिस्कवरिंग लाइफ ट्रेजर्स, जीवन के खजानों की पुनर्खोज। आज के अंधाधोड़ इस युग में जिंदगी है पर जिंदगी के असली मायने खो गए हैं और इसी की खोज है, तलाश है। जीवन के खजानों में बहुत बड़ा खजाना है, स्वास्थ्य का खजाना। आज का टॉपिक है ट्रेजर ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का खजाना। तो मैं अपने चेयरपर्सन से आज्ञा चाहूंगी कि आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करें। और सबसे पहले प्रकृति ने हमें तन मन और बुद्धि दी है तो यह व्यवस्था भी दी है कि जिसे जो जरूरत होती है वह उसे अपने तरीके से मांग लेता है। करना है तो सिर्फ इतना कि हम अपनी सुने, अपने को समझें, यही स्वस्थ होने की स्थिति है और बाकी सुखों को भोग पाने की योग्यता। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक सद्भाव है। शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्त होने पर सुखों के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। बुद्ध ने भी स्वीकारा था कि सुख का द्वार स्वास्थ्य के रास्ते से होकर जाता है। इन सब बातों का अर्थ इतना सा कि अपनी परवाह कीजिए, पहला सुख तो क्या, सभी सुख आपके दामन में होंगे। तो मैं सविता, डॉक्टर सविता दी जिनका परिचय है, डॉक्टर सविता आपका जन्म 1965 कोटा राजस्थान में हुआ और आपने अपना MBBS 1989 में पूरा किया। 1991 में ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने सेवाएं दी, 1991 से 2000 तक ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने सेवाएं दी। अभी आप ब्रह्मा कुमारी जिश्वरी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि थी और 1975 में ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े। आपने पूरे देश में अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को राजयोग और जीने की कला की शिक्षा दी। महिला प्रभाग के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का संचालन किया। आप ब्रह्मा कुमारीज एकेडमी के फैकल्टी मेंबर हैं। आपने मेडिकल कॉलेज ऑफ एंड इंजीनियरिंग कॉलेज जेल और अन्य संस्थाओं में 100 से भी ज्यादा लेक्चर दिए हैं। तो वैसे तो डॉक्टर सविता दीदी जो बहुत ही सरल और नम्र हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, फिर भी उनका कुछ सूक्ष्म परिचय दिया है और अभी दीदी आपको बताएंगी ट्रेजर ऑफ हेल्थ।
ओम शांति। मंचल सेन हमारे भ्राता एनडी जोशी आरा जी, भ्राता एचके पांचाल जी, भ्राता विपिन कुमार जी, भ्राता शेषनाथ सिंह जी, कविता बहन, महिमा बहन और सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनें, स्वास्थ्य हम सबकी पूंजी है, इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। संस्कृत में कहा गया स्वास्थ्यमेव सर्व सुख मूलम, सभी सुखों का मूल स्वास्थ्य है। यदि हम सभी सुखों का अनुभव करना चाहते हैं, बहुत सुख हमारे जीवन में है, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो उन सुखों का सच्चा आनंद हम नहीं ले सकते। फिर ये भी कहा गया स्वास्थ्य के बारे में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग होने पर हम उसका इलाज करें, उसमें समय शक्ति धन सब कुछ व्यय होता है और जरूरी नहीं कि हम अपना पहले वाला स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर पाए। इसीलिए बीमारी होने के बजाय बीमारी की रोकथाम की जाए और वो हमारी स्वस्थ जीवन शैली पर निर्भर करता है। यदि हम चाहें तो स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में होता है। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने स्वास्थ्य की परिभाषा में कहा हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल रोग का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन ये संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम सचेत होते हैं, शरीर में कोई भी कष्ट होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उससे कम, और सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में तो हमें अज्ञान ही है। तो आज हम अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आध्यात्मिक स्वास्थ्य से हम अपने अन्य सभी स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। आज वर्तमान मेडिकल साइंस में 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं, यानी जो तनाव जनित हैं या भय और चिंता से उत्पन्न रोग हैं, उन्हें साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं। आज का युग तनाव का युग है और तनाव के प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ते हैं। और इसमें जो मुख्य रोग हैं, उसमें ब्लड प्रेशर, उसकी स्टेज ये है कि आज 20% पॉपुलेशन ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त हैं, 15% को हार्ट डिजीजेस हैं, 20% को डायबिटीज हैं, 20% को पेप्टिक अल्सर है, 10% रेस्पिरेटरी डिजीजेस जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि बीमारियां हैं, स्किन डिजीजेस 10% और कैंसर 5%। ये सब साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं जिनकी परसेंटेज आज बढ़ती जा रही है। स्वस्थ रहने का कंसेप्ट है, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अगर चार बातों का हम ध्यान रखते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भोजन है वो संतुलित भोजन होना चाहिए, और भोजन हाई फैट, लो फाइबर, नॉन वेजिटेरियन डाइट, ये हम ज्यादा पसंद करते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। आज फास्ट फूड का प्रचलन है, तला हुआ भोजन वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है, मसालेदार भोजन वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है, और जब हम अधिक इस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं तो अनेक बीमारियों को हम स्वतः निमंत्रण देते हैं। तो हमारा भोजन वास्तव में होना चाहिए लो फैट, हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट, लो सॉल्ट, लो शुगर डाइट। हम हाई फाइबर डाइट लें जिसमें कि अनाज है, रेशे, सब्जियां, फल, जिसमें बहुत रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। प्रतिदिन कुछ समय हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। आज की जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम आरामदायक जीवन शैली में जीते हैं क्योंकि विज्ञान ने हमें इतने साधन दिए हैं कि हमारे सभी कार्य सहज संपन्न हो जाते हैं, हमें ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता है, यहां तक कि ऑफिस आने जाने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई वाहन होता है, तो लगभग हम पैदल भी नहीं चलते हैं, और यदि हम कुर्सी पर बैठकर सारा दिन काम करते हैं तो फिर हमें अपने व्यायाम के लिए अतिरिक्त आधा घंटा रोज निकालना चाहिए। और जब हम व्यायाम करते हैं तब हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो बढ़ता है, और व्यायाम का नियम है कि 40 मिनट हम व्यायाम करें या ब्रिस्क वॉक करें या योगासन करें, जिस भी तरह से आप व्यायाम करना चाहते हैं, वो एरोबिक एक्सरसाइजेस ज्यादा होना चाहिए, सनराइज के बाद सनसेट के पहले, क्योंकि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर हम अंधेरे में एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिलता है, इसलिए बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का है सनराइज के बाद और सनसेट के पहले। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स बनते हैं, सेरोटोनिन्स बनते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है, पूरे शरीर में ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और बॉडी सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो ये व्यायाम के फायदे हैं। तो यदि हम व्यायाम करते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करते हैं तो कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट का व्यायाम प्रति सप्ताह 5 दिन अवश्य किया जाना चाहिए, तब हमारे पूरे शरीर को जो गति मिलनी चाहिए वो गति मिलती है, और हम बहुत सारी बीमारियों से और खासकर साइकोसोमेटिक बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त गहरी नींद होनी चाहिए, और यदि हम चिंता में सोते हैं तो हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, और सोने का सही समय होता है रात को हम 10 बजे सो जाएं और सुबह 5 या 6 बजे हम उठ जाएं, 7 से 8 घंटे की नींद इनफ होती है, लेकिन आज की जो जीवन शैली है ज्यादातर मनुष्य अपने शाम का समय टेलीविजन के सामने गुजारते हैं, सिनेमा देखते हैं, रात देर से सोते हैं, 12 बजे तक सो पाते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं, तो अगर हम 12 बजे सोकर के सुबह 8 बजे उठते हैं तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल घड़ी है, जैविक घड़ी है, वो डिस्टर्ब होती है। हमारे हार्मोन सिक्रीशंस डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसीलिए कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेट टू बेड लेट टू राइज हमारी दिनचर्या होती है हरी वरी एंड करी, क्योंकि अगर हम देर से उठते हैं, समय पर हमें सब काम पूरे करने होते हैं, तो जल्दबाजी में हम अपने काम पूरे करते हैं, तनाव से हमारी दिनचर्या शुरू होती है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुछ लोग अपनी परेशानियों और चिंताओं से मुक्त होने के लिए व्यसन लेने लगते हैं, और जब व्यसन लेते हैं, चाहे वो स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, किसी भी रूप में, कई रूप में तंबाकू मिलता है, पान मसाला होता है, गुटखा होता है या ड्रग्स भी होते हैं, कई बार सिर्फ मॉडर्न दिखने के लिए, आधुनिक दिखने के लिए या पीयर प्रेशर में आकर के भी व्यसन लेते हैं, और व्यसन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वो तनाव को दूर करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन परिवार वालों का तनाव भी जरूर बढ़ा देते हैं। और आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ष पहले जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसने सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग को निषेध किया था, और उसका कारण है कि यदि कोई स्मोक करता है पब्लिक प्लेसेस पर, तो उसका धुआं जितना स्मोक करने वाले के लिए हानिकारक है, उतना ही दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है। तो यदि परिवार में भी कोई स्मोक करता है तो परिवार के सदस्य भी उससे उतना ही प्रभावित होते हैं, और एक स्मोक में 400 के जैसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, और इसमें कुछ ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करते हैं। कई प्रकार के कैंसर निकोटीन से, तंबाकू से शरीर में होते हैं, और अकेले भारत में हर वर्ष 10 लाख मौतें जो हैं वो केवल तंबाकू के सेवन से होती हैं। ऐसे ही यूके की एक घटना है कि एक व्यक्ति को फेफड़े का कैंसर हुआ, और उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि आपकी कंपनी की सिगरेट पीने से, जिस कंपनी की वो सिगरेट पीता था, आपकी कंपनी की सिगरेट पीने से मुझे कैंसर हुआ है, इसलिए मेरे इलाज का खर्च आपको देना है। तो सिगरेट की कंपनी ने कहा कि हमने सिगरेट के पैकेट पर लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपने क्यों पिया? तो उन्होंने कहा, आपने सिर्फ ये लिखा है हानिकारक है, आपने ये नहीं लिखा कि इससे कैंसर होता है। केवल हानि होना और कैंसर होना वो बहुत अलग बात है, कैंसर तो जानलेवा बीमारी है। और इन सब बातों से वो अपना केस जीत गए और कंपनी को उसके इलाज का पूरा खर्च देना पड़ा, और बाद में कंपनी ने उस पैकेट पर लिखना शुरू किया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। आजकल शायद सिगरेट के पैकेट पर वो लिखा होता है, शायद उसका फोटो भी होता है कि कैंसर होता है। और जब ये छपने लगा तो अमेरिका में 30% लोगों ने सिर्फ ये देख करके ही सिगरेट पीना छोड़ दिया, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है। बहुत लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं होती है कि ये सचमुच हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है, और खासकर कम आयु में अपने दोस्तों के संग में आकर के लोग कई बार व्यसन लेना शुरू कर देते हैं। मन और शरीर का भी बहुत गहरा संबंध है। हमारे मन में जैसे विचार चलते हैं, जैसी भावनाएं होती हैं, और खासकर जब हम तनाव और चिंता की स्थिति में होते हैं तो हमारी भावनाएं नकारात्मक अधिक होती हैं। तो आप देख रहे हैं, जब हम नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, यानी जब हमारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज होती हैं, उसका हमारे सबसे पहले हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट होता है, जो भावनाओं का केंद्र है। वहां से स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, पूरे सिस्टम को वो स्ट्यूमुलेट कर देते हैं, और उससे बॉडी में जो रिस्पॉन्स होता है, उससे फीलिंग ऑफ डिजीज, सैडनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी होती है। और यदि पॉजिटिव टीम है, पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरी है, तो सिक्रेशंस बिल्कुल अलग होते हैं। ये एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स होते हैं, उससे पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस होता है हमारे शरीर में, और फीलिंग ऑफ वेलबींग, हैप्पीनेस एंड हेल्थ होती है। येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है, जिसमें एक स्टडी की गई स्टूडेंट्स के ऊपर। उनकी 20 वर्ष की आयु थी और तनाव का क्या प्रभाव होता है स्वास्थ्य के ऊपर, उसके लिए ये ग्रुप लिया गया और उसको दो भागों में बांटा गया उनकी पर्सनालिटी के अनुसार। पहले ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया जो तनाव वाली पर्सनालिटी के थे, यानी बहुत कॉम्पिटिटिव थे, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते थे। दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया जो उसके अपोजिट नेचर के थे, यानी बहुत काम, क्वाइट और फोकस कर सकते थे, जल्दी गुस्से में नहीं आते थे, धैर्य रख सकते थे। तो उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो देखा गया कि उस एज ग्रुप में उस समय सभी का स्वास्थ्य सामान्य था, लेकिन ये एक स्टडी थी और उनको हर 10 साल में फॉलोअप के लिए बुलाते थे, चेकअप के लिए बुलाते थे। तो जब 50 साल की उम्र तक पहुंचे वो दोनों ही ग्रुप, तो देखा गया जो पहला ग्रुप था उसमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना साइकोसोमेटिक बीमारियां हो चुकी थी, साइकोसोमेटिक डिजीजेस आपने देखे। और ये भी देखा गया कि पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना मृत्यु की संभावना भी ज्यादा थी। तो यही कारण है कि हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और हमारे मनोभाव सकारात्मक रहें, आशावादी रहें, वो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। और यदि हम स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं तो हमारे शरीर में जो आम बीमारियां होती हैं उसका सबसे पहला असर हार्ट पर आता है। हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और अगर कोरोनरी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, आजकल 40 साल की उम्र तक आते आते कोरोनरी ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, और जब स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी में एड्रेनलिन बनती है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उसमें एड्रेनलिन एक केमिकल है जो हार्ट की नलियों को सिकोड़ देता है, यानी कंस्ट्रिक्ट करता है, और उसकी वजह से हृदय को ऑक्सीजन कम मिलती है। तो इट कैन लीड टू एंजाइना एंड समटाइम्स इवन हार्ट अटैक। तो ये देखा गया कि हार्ट अटैक्स का एक मेजर रीजन जो है वो स्ट्रेस है। और भी कारणों से हार्ट डिजीजेस होते हैं, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज इज स्ट्रेस। अल्सर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्वेटिंग, बहुत अधिक पसीना आना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आता है, उसकी वजह से नींद नहीं आना, सिर दर्द होना, या पूरे शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, या हमेशा थकान महसूस। ऐसे ही डायबिटीज और आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं, और स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून लेवल कम हो जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और उसकी वजह से शरीर में इन्फेक्शंस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यदि हम कहते हैं कि आज जैसे इबोला वायरस फैला है या पहले स्वाइन फ्लू फैला था पूरे वर्ल्ड में, तो वो सबको नहीं होता है। अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, अब चाहे उसके लिए स्ट्रेस जिम्मेवार हो या देयर मे बी सम अदर फैक्टर्स, तो फिर वो बीमारी इंसान कैच करता है, अदरवाइज वो इनइफेक्टिव रहता है। भले एनवायरमेंट में वो वायरस मौजूद होगा या कोई उससे इन्फेक्टेड व्यक्ति आपके संपर्क में भी आएगा, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो डिजीज या वो वायरस, वो बैक्टीरिया हमें इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। जीवन में तनाव की परिस्थितियां तो सभी के सामने आती हैं। कहते हैं आज का जो समय है उसमें समस्याएं सागर की तरह हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब इंसान के सामने समस्या नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच कैसी है उसी अनुसार हम महसूस करते हैं। तो आप पूरे कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर बहुत विस्तार से सुन रहे हैं, लेकिन यदि हम अपने तनाव को कम महसूस करना चाहते हैं तो परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में हमें परिवर्तन लाने की जरूरत होती है। एक जैसी परिस्थितियों को अगर चार लोग सामना कर रहे होते हैं तो चारों का रिस्पांस अलग अलग होता है, क्योंकि चारों उसको अलग तरह से सोच रहे होते हैं। एक मैसेज मैंने पढ़ा था कि एक राइटर थे और उन्होंने अपने बीते हुए साल के बारे में लिखा, जैसे अभी अभी पुराना साल गया है, तो उन्होंने लिखा कि बीता साल मेरे लिए बहुत बुरा रहा और उसके कारण थे कि मुझे अपनी सर्जरी करवानी पड़ी और वो सर्जरी के कारण काफी दिनों तक मुझे बेड पर रहना पड़ा। दूसरा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तीसरा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण वो काफी महीनों तक बिस्तर पर रहा और उसका एक साल बर्बाद हो गया क्योंकि वो एग्जाम नहीं दे पाया। चौथा, मैं रिटायर हो गया, पिछले साल ही मेरा रिटायरमेंट हुआ। तो उनकी पत्नी ने ये सब देखा कि वो ये सब नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और उसने दूसरा पेपर लिया और फिर उसने उसी बात को लिखा कि बीता साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, सर्जरी हुई लेकिन बहुत लंबे समय के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। फिर बोला अभी रिटायरमेंट हो गया है क्योंकि वो राइटर हैं, तो अब उनको अपने लिखने के लिए, फोकस करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और बेहतर लिख पाएंगे। पिताजी की 95 इयर्स की एज में मृत्यु हुई, बिना कष्ट के उनके मृत्यु हुई तो ये बहुत ही अच्छा रहा। और बेटे का एक्सीडेंट हुआ, भले ही हमारी कार पूरी तरह से नष्ट हो गई लेकिन भगवान ने उसको नया जीवन दिया, तो हमें जो उसके जीवन की सौगात मिली वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। अब वही घटनाएं हैं लेकिन हम उसको किस तरह से सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से महसूस करते हैं। और आज की जो मेडिकल साइंस है उनका पूरा फोकस जो है वो फिजिकल बॉडी पर होता है। जितने भी रिसर्चेस होते हैं, सर्जरीज होती हैं या जो भी इंजेक्शंस और दवाइयां हैं, वो हमारे शरीर के लिए हैं। मेडिकल साइंस आत्मा के लिए कोई रिसर्च नहीं करता है, जो हमारी चेतना है। आपने आत्मा के विषय में बहुत विस्तार से सुना है। तो आज की बीमारियां इनक्यूरेबल हैं। मेडिकल साइंस में ज्यादातर बीमारियां सिर्फ कंट्रोल होती हैं, क्योर नहीं होती हैं। कंट्रोल करने का मतलब है कि एक बार अगर वो बीमारी आ गई तो जीवन भर मनुष्य को उस बीमारी के साथ जीना पड़ता है। एक बार ब्लड प्रेशर हो गया, एक बार डायबिटीज हो गई, एक बार हार्ट डिजीज हो गई, एक बार अस्थमा हो गया, आप दवाई खाते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अगर आपने दवाई खाना बंद कर दिया तो वो बीमारी पुनः आ जाएगी। बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है। तो क्यों इनक्यूरेबल है? तो इसमें दो शब्द हैं, इन प्लस क्यूरेबल। वो तब क्योर किए जा सकते हैं जब हम अंदर जाना सीख जाते हैं, यानी वी नीड टू गो विद इन to cure those diseases and we do not know how to go within. अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो स्वस्थ शब्द है वही अपने आप में उसके अर्थ को बताता है। ये संस्कृत शब्द है स्वास्थ्य या स्वस्थ, जिसका अर्थ है स्व में स्थित होना। तो पहले तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो मैं केवल भौतिक शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा में स्थित होना, आत्मा के गुणों में स्थित होना, उन गुणों का अनुभव करना, वो हमें स्वस्थ बनाता है क्योंकि वो हमारी मनोभावनाओं को सकारात्मक करता है, मनोभावनाओं को श्रेष्ठ करता है। अगर हम इंग्लिश में हेल्दी कहते हैं तो हील प्लस दाई, दाई माना होता है स्व, स्व को हम स्व के स्वरूप से ही हील कर सकते हैं। तो इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में आना होगा, तब चारों प्रकार का स्वास्थ्य हम अनुभव कर सकते हैं। एक सीरियस पेशेंट आता है हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, इलाज में वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसको अगर बचा नहीं पाते हैं तो रिलेटिव्स को कहते हैं बॉडी को ले जाओ। हाँ, अभी नहीं कहते हैं पेशेंट को ले जाओ, बॉडी को ले जाओ। तो अब वो बॉडी क्यों है? आया था तो पेशेंट था लेकिन अब सिर्फ बॉडी है, क्योंकि वो जो लाइफ फोर्स था, जो उसे जीवन दे रहा था, वो जीवन देने वाली शक्ति अब नहीं है, और उसी बॉडी के अगर कुछ अंग दान किए जाते हैं, आजकल ऐसा किया जाता है, कोई नेत्र दान करता है, कोई अपनी किडनी दान करता है, तो अगर वो जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो वो अंग जीवित व्यक्ति में काम करने लगते हैं। जो एक डेड बॉडी में आंखें नहीं देख रही हैं, डेड बॉडी में किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन वही एक जीवित व्यक्ति में फंक्शन करते हैं। तो इसका मतलब जो आत्मा है वो इस शरीर को जीवन दे रही है, वो जीवन शक्ति है, और जिस शरीर में आत्मा है उसमें वो अंग कार्य करने लगते हैं। और आपने ये भी समझा कि आत्मा के सात गुण हैं, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति। ये स्पिरिचुअल एनर्जी है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। तो यदि ये सभी गुण 100% हैं, तो हमारे सभी अंग 100% स्वस्थ रहेंगे। इन सात गुणों का संबंध हमारे सात शरीर के मुख्य अंगों से है, मेन सिस्टम से है। ज्ञान के गुण का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, यानी ज्ञान हमारे मस्तिष्क को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। ऐसे ही शांति का संबंध हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, सुख का संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है, शक्ति का संबंध हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से है, यानी मांसपेशियों और हड्डी से है, प्यूरिटी का संबंध हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स और इम्यून सिस्टम से है, और ब्लिस का संबंध हमारे हार्मोन सिस्टम से है। तो मानो अगर मुझे हृदय रोग होता है तो ये मुझे एक संदेश देता है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में प्रेम की कमी है, क्योंकि प्रेम का संबंध हृदय से है। या तो हम प्रेम देने में कम है या हम प्रेम लेने में कम है। अगर मेरे मन में बहुत दूसरों के प्रति गुस्से की भावना, स्वार्थ की भावना, ईर्ष्या की भावना या वैर भावना, जो प्रेम के विपरीत मनोभाव है, या हम बहुत अकेलापन अनुभव करते हैं, दूसरों से तिरस्कृत अनुभव करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई स्नेह नहीं देता, तो धीरे धीरे हमारे हार्ट का सिस्टम वीक होता जाएगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी की सप्लाई है हार्ट को वो कम होती है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ब्लॉकेजेस डेवलप होने लग जाएंगे, या कोई वॉल्वुलर डिजीज हो जाएगा, या हार्ट की मांसपेशियां कमजोर होंगी, कोई भी प्रकार का हृदय रोग होना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने कॉन्शियसनेस को चेंज करना होगा, अपनी मनोभावनाओं में परिवर्तन लाना होगा। और यदि हम परिवर्तन लाते हैं, अपने जीवन को स्नेहपूर्ण बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये रिवर्स होने लगेगा प्रोसेस, और हमारा सिस्टम हील होने लग जाएगा। ऐसे ही सभी सिस्टम के लिए है, जो जो मनोभाव, जैसे सुख की बात डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, तो यदि हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी फीलिंग में आ जाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सदा वीक रहेगा। अगर उसको फिर से हम हील करना चाहते हैं तो हमें अपने कॉन्शियसनेस को चेंज करना होगा, अपनी फीलिंग्स को हमें चेंज करना होगा, तो वो सिस्टम फिर हील होने लगेगा। आप देख रहे हैं नेगेटिव टीम, इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी टू वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स, स्पेशली द टारगेट ऑर्गन। और पॉजिटिव टीम फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी टू द वेरियस ऑर्गन सिस्टम, और हम स्वस्थ होते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन हमें बैलेंस्ड, प्रॉपर, नेचुरल वेजिटेरियन डाइट लेना चाहिए, जो कि लो फैट, हाई फाइबर डाइट, लो सॉल्ट, लो शुगर डाइट हो। डेली मॉर्निंग वॉक या इवनिंग स्ट्रोल लें। प्रॉपर स्लीप हो हमारा, प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, अगर बीमार हो गए हैं और डॉक्टर्स दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें दवाई लेने की आवश्यकता होती है। और हम हेल्थ कॉन्शियस रहें, यानी स्वास्थ्य के कॉन्शियसनेस, मन का प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है, तो बॉडी कॉन्शियस या डिजीज कॉन्शियस होने की बजाय हम हेल्थ कॉन्शियस रहें। और अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए हमेशा अपने मनोभावनाओं को पॉजिटिव रखें, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज को, और ब्लॉकेजेस जो हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं उनको रिमूव करने के लिए प्रतिदिन हमें अपने आप को थोड़ा समय देना होगा। हम मेडिटेशन करें, रियलाइजेशन करें, स्वयं में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं और इस तरह से स्व में स्थित होकर के सदा हम स्वस्थ अनुभव करें, अपनी जीवन शैली में हम परिवर्तन ला करके स्वस्थ रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता दीदी। तन और मन के स्वस्थ रहने के कायदे डॉक्टर सविता दीदी के पास खूब मौजूद हैं। उस आजमाई हुई समझदारी को आप भी अपनाएं और जीवन के हर पहलू में कुशल मंगल पाएं। अभी मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर विपिन कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर SVP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ।
धन्यवाद बहन जी। आज के इस सेशन में उपस्थित समस्त भाइयों और बहनों, जैसा कि मुझे निर्देशित किया गया है कि इस सेशन में मैं एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने के नाते थोड़ा सा पौधों पर स्पिरिचुअल अध्यात्म का क्या असर होता है उसके संबंध में बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि समय की थोड़ा प्रतिबद्धता है इसलिए कम समय में ही अपने उद्घोषण को संक्षिप्त करने का वो करूंगा। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि आज के विशेषकर कॉरपोरेट युग में जितने भी वैज्ञानिक या अभियंता या और जितने भी उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, उनके जीवन में टेंशन एक कॉमन सी बात हो गई है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसके जीवन में इस तरह की टेंशन अपने व्यापार, कारोबार या परिवार से संबंधित ना हो, और ये टेंशन विशेषकर उस परिस्थिति में और बढ़ जाती है जब आप किसी प्रशासनिक पद पर हो, कोई जिम्मेदारी आपके कंधों पर अधिक हो, तो उससे कैसे निजात पाएं इसके बारे में, क्योंकि मैं यहाँ ब्रह्म कुमारीज में पहली बार आया हूँ, काफी पहले से सुनते आए थे इनके बारे में, लेकिन परमात्मा के इस घर में आने का सौभाग्य कभी पहले प्राप्त नहीं हो सका, अब हुआ तो तुरंत निमंत्रण मिलते ही चले आए। इसका थोड़ा सा 2-3 अध्यात्म का पौधों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसके जो विशेषकर हमारे साइंटिफिक लाइफ से जो गुजरी हुई 2-3 बातें हैं मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जिस तरह से अध्यात्म का हमारे घर परिवार समाज पर असर पड़ता है, पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा असर आएगा, निगेटिव सोच होगी तो उसका बुरा असर आएगा, ये कॉमन सी बात है। इसी प्रकार से हमारी सोच का, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का पौधों पर भी असर पड़ता है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे घर परिवार, आसपास का जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, वो भी स्वस्थ होंगे। मैं आपको अपने जीवन से घटित एक घटना इस संबंध में बताना चाहूंगा कि 90s में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक इंस्टीट्यूट है NRC ऑन DNA फिंगरप्रिंटिंग, वहां पर मैं सर्विस करता था। इससे पूर्व में वर्तमान कार्य से पहले मैं वहीं पर था, तो उस समय हमारी जो लेबोरेटरीज थी उसमें 4-5 साइंटिस्ट थे और बाकी जो और हम असिस्टेंट लोग थे, 10-12 का टोटल स्टाफ था। तो हमारे वहां पर एक कजाकिस्तान से वैज्ञानिक अपनी PhD की थीसिस करने के लिए आए, अपनी PhD का काम करने के लिए आए। तो वो उनका काम क्या था कि जैसे ही सुबह 9 बजे लेबोरेटरी प्रयोगशाला खुली, वो आए, आराम से चेयर पे बैठ गए, पूरा दिन बैठे रहे, शाम को जैसे 4:30 बजे सबको देखते रहते थे, उसके बाद सबके निकलने से 5 मिनट पहले वो निकल जाते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, तो सबके मन में थोड़ा जिज्ञासा सी हुई कि भाई ये आए तो अपनी कुछ रिसर्च करने हैं लेकिन ये तो पूरा दिन बैठे रहते हैं। तो उस समय जो हमारे लैब इंचार्ज थे डॉक्टर KV भट्ट हैं, अभी भी हैं वहां पर कार्यरत, तो मैंने धीरे से उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर ये जो आए हैं कजाकिस्तान से वैज्ञानिक महोदय, ये किस परपज से आए हैं? कुछ ये तो जासूसी सी कर रहे हैं हमारे यहाँ। कहने लगे जासूसी नहीं, किसी और को मत बताना, इनका बड़ा सीक्रेट टॉपिक है और वो उसी टॉपिक पे अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी ऐसा क्या टॉपिक है जो शेयर भी नहीं कर सकते किसी के साथ? कि इनका जो पीएचडी का टॉपिक है कि आपस में जो लैब स्टाफ होता है उनका इंट्रैक्शन और उनका अध्यात्म का उनके परिणामों पर, शोध परिणामों पर और वहां का जो वातावरण है प्रयोगशाला के अंदर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनका 6 महीने का प्रोजेक्ट था, हमारे वहां पर 3 उस तरह की लैबोरेटरीज हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, जैसे मनुष्यों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसी प्रकार से पौधों की भी वो प्रयोगशाला है। तो मैं 3 प्रयोगशालाएं उस तरह की हैं। 2 महीने पहले उन्होंने हमारे यहां काम किया, उसके बाद 2 महीने दूसरी लैब में और अंतिम के 2 महीने तीसरी लैब में। तो जब उनका काम पूरा हो गया तो 6 महीने में दोस्ती तो हो ही जाती है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या इस चीज का असर पड़ा है, कुछ बताओगे? तो ये जो विदेशी लोग हैं, विदेशी क्या है, साइंटिफिक कम्युनिटी में होता है कि जब तक उनका शोध परिणाम पूरे न हो जाए वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। अनपब्लिश रिजल्ट जो होते हैं जब तक प्रकाशित न हो जाए, ऑथेंटिसिटी उसकी न हो जाए, वो उसको शेयर नहीं करते। तो उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल के बाद उनका कम्युनिकेशन उनसे लगातार होता ही रहता था, फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू। तो जब उन्होंने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली तो मैंने उनसे वो चीज शेयर की, मैंने कहा जी बताओ। तो तब उन्होंने बताया कि हमारी जो अपनी लैब थी, हमारी लैब नंबर 1, उसके रिजल्ट सबसे बेस्ट आए हैं। उसका रीजन क्या था? रीजन की जो हमारा आपस का अंदर का व्यवहार था सभी लैब स्टाफ का, वो बाकी उनके मुकाबले उन्होंने बेहतर पाया। और उस बेहतर पाने का कारण क्या था कि हमारे यहां उस समय एक डॉक्टर बी के विश्वास होते थे पश्चिम बंगाल के। बी के मीन्स उनका नाम बी के था, ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी से उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनका नाम बी के विश्वास था, लेकिन वो इस संस्था से उस समय जुड़े हुए थे। तो वो इसके बारे में हमें कई बार बताते रहते थे। शुरू में उनकी बात इग्नोर हम करते रहते थे, टाइम नहीं होता था, नहीं भी सुनते थे, लेकिन वो बड़े अच्छे आदमी थे। जब भी खाली समय होता था हम सब लोगों को बैठा करके इस तरह की आध्यात्म की बात, स्पिरिचुअलिटी, वो सब हमको बताते रहते थे। धीरे धीरे ऐसा हो गया, विश्वास जी ने लैब का माहौल ऐसा कर दिया हमारी कि टाइम फटाफट अपना काम किया। 9 बजे का समय अगर लैब खुलने का है तो 8:30 बजे आना शुरू हो गए कि भाई जल्दी अपना काम पूरा करके और विश्वास जी की बात सुनेंगे। वो हमारा लैब का माहौल इतना अच्छा हो गया कि उसका असर पेड़ पौधों पर भी पड़ा। अब आपको होगा कि वहां अंदर पेड़ पौधों पर कैसे पड़ गया, क्योंकि लैबोरेटरीज में आजकल बहुत छोटे छोटे पोर्ट्स में ही पौधे उगाए जाते हैं और उन पर ही अपनी रिसर्च होती है। तो कहने का मतलब है कि जो पौधे उगाने का तरीका, उनकी सर्वाइवेबिलिटी यानी कि उनका वातावरण के अनुकूलन, वो सब बाकी लैबों के मुकाबले अच्छा था। और वो चीज, वो जो कजाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने उसमें भी कोट की हुई है, मैं उसका रेफरेंस दे सकता हूं, अभी मुझे बड़े शॉर्ट टाइम में बताया गया है, लेकिन वो उस चीज का असर है। और दूसरे इसकी जीती जागती मिसाल हम सब लोग यहां भी देख सकते हैं, 3 दिन से हम यहां रुके हुए हैं, यहां की जो क्लाइमेट है, यहां का जो वातावरण है, कोई भी पौधा में यहां मुरझाया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा का दरबार है, आध्यात्मिक सोच बहुत अच्छी है यहां पर सभी की, उसका असर यहाँ की वनस्पति, पेड़ पौधे, फूल फल जितने भी हैं सभी पर है। और मैं एक अचंभे की बात देख रहा हूँ कि जैसे प्लांट साइंटिस्ट हैं, उस बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर तीनों तरह मीन्स जो वातावरण के अनुसार जो पौधे हैं उन्हें 3 कैटेगरी में हम विभाजित करते हैं वैज्ञानिक लोग, एक टेम्परेट रीजन के पौधे, एक ट्रॉपिकल रीजन के और एक सब ट्रॉपिकल। टेम्परेट वाले सब ट्रॉपिकल में नहीं हो सकते, सब ट्रॉपिकल वाले ट्रॉपिकल में नहीं हो सकते, इसलिए आपस में एक दूसरे के उसमें बहुत अच्छा सर्वाइव ग्रोथ हो नहीं कर पाते। लेकिन मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि तीनों रीजन के पौधे यहां पर बहुत अच्छी सर्वाइबिलिटी उनकी ग्रोथ और वो है। तो इसका कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव हो रही है, बिल्कुल जीती जागती मिसाल है कि इसका असर पेड़ पौधों पर भी है। तो ये क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी है तो इतने में ही आपको बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का पेड़ पौधों पर सीधा असर होता है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विपिन कुमार भाई जी। स्वास्थ्य हर एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य एक ऐसे बहुमूल्य खजाना है जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। लोग प्राय अच्छे स्वास्थ्य के बदले में कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। अब मिस्टर एच के पंचाल भाई जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, आप स्वास्थ्य के लिए कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे।
हम पहले 3 बार प्रेम से, शांति से और आनंद से बोलेंगे, ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति। ये ओम शांति आपको मैंने क्यों बुलवाया, सभी बुलवाते हैं, इसलिए नहीं, पर ओम बोल के अपने मन को सुकून मिलता है, शांति से। अभी जो टाइम हुआ है अपना खाने का, सभी सोचते होंगे कि खाने का टाइम हुआ है, डिले हुआ है, तो अपना जठराग्नि शांत हो जाए, इसके लिए शांति है। तो हम प्रेम से बोलेंगे तो अब हम टाइम नहीं देखेंगे कि खाने का टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। आयुर्वेद में कहा हुआ है लांगनम परम औषधम, आप उपवास करेंगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। भगवत गीता में, शास्त्रों में कहा है कि हम किस, हमारे शरीर की जरूरत क्या है, अच्छे हेल्थ के लिए हमको क्या चाहिए, उसमें कहा है फलम पुष्पम पत्रम एंतोयम, फल पुष्प पत्र और पानी, ये तीनों चीज की जरूरत है। ये चारों चीज परम मात्रा में, और जितनी चाहे उतनी अपने शरीर के अनुसार ले तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। ये सब खाने की चीज जो बनाई हुई है, हम सब रेसिपी आती है, वो आज रेसिपी आती है, कितने तरह की चीजें मिलावट करके हम खाना खाते हैं, तो उसका असर हमारे शरीर पर क्या होता है हम देख रहे हैं। हम पहले वेल्थ कमाने के लिए दौड़ते हैं, फिर वो वेल्थ हेल्थ के पीछे खर्चा करते हैं। तो ये हेल्थ पहले से ही हम क्यों ना ले, ऐसा हमको प्रयत्न करना चाहिए। मेरा यहाँ दूसरी बार आना हुआ है, पहले 2 महीने पहले मैं इधर पावर प्लांट के लिए आया था, इधर 2-3 रुका था, तो मैंने इधर का एटमॉस्फेयर देखा। इधर 2-3 रुका तो मैंने अपने आप में महसूस किया कि इधर जो शांति है वो अद्भुत शांति है। इधर जगह का नाम जो दिया है पीस फॉरेस्ट, शांतिवन, तो रियल में इधर शांति मिलती है। अभी आप में से मैं भी 2-3-4 दिन से इधर कोई आया हुआ है, तो जिसको पीस का अनुभव हुआ है वो प्लीज अपना हाथ उधर करेंगे। ये सबको अपना इतना पीस का आनंद अनुभव हुआ है, ये क्या बताता है, ये इस जगह का महत्व है, इस जगह का प्रभाव है। इधर के जो डिवोटीज है उनको मैं देखता हूं तो उनका सबका शरीर एकदम स्लिम और एकदम एनर्जेटिक लगता है, तो अपने से भी जो भोजन लेते हैं वो सात्विक लेते हैं, वो तो एक भोजन की बात है, पर उनका उनका मन का खोराक है जो जो साधना करते हैं, वो उतना अपने से इतना बढ़िया है कि उनका मन का असर अपने तन पे पड़ता है और वो इतने खुश दिखते हैं। और हम अपने कंपेरिजन हेल्थ, अपने मन की हेल्थ की या मन की वेल्थ की कंपेरिजन करें तो मालूम पड़ेगा कि मन की हेल्थ पहले आप रखें। मन की हेल्थ को अच्छी रखने के लिए अपने को किस किस अभी तो शुरू किया और टाइम ओवर, किसी को भी भूख लगा है? ओके, हमने ठीक है, हमने अपने पुराणों में भी देखा है और हम हनुमान और राम का पात्र देखते हैं, हमको हनुमान बनना है, राम बनना है, तो राम कैसे जिए हनुमान कैसे जिए वो सोचना चाहिए। वो वन में रहे, ऐसा खाया और पूरे भाव से समर्पित रहे, तब वो ऐसा शरीर बना सके। महाभारत में भी देखेंगे कि द्रौपदी, तो द्रौपदी ने बोला कि उनके परम भीष्म पितामह को कि आप तो इतने बड़े थे, सब अपने छोटे थे, उनको बोल सकते थे कि मेरी ये हालत हो रही है, तो आप, तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने धृतराष्ट्र का अन्न खाया हुआ है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सका। पांडव उससे कौरवों से सशक्त थे, तो वो बोले कि हम अपना जुआ में हार गए हैं, वो उतना अपना तो हम कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में उसने कृष्ण भगवान को याद किया और कृष्ण भगवान को भी द्रौपदी बोली कि मेरी इतनी हालत हो गई, बाद में आप क्यों आए? तो कृष्ण ने कहा कि जब मेरे को लगा था तो तुमने मेरे को जो धागा बांधा था वो मेरी दया इनकी भावना से, मेरी मेरे को लगा है ऐसा भाव करके मेरे को बांधा था, तब आपकी जो द्रौपदी की दया इन स्थिति हुई, तब भगवान उनको मदद के लिए आया। तो हमको ये समझना चाहिए कि किस भाव से हम काम कर रहे हैं, तो वो भाव से हमको भगवान मदद करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके, थैंक यू।
एक बात तो तय है, व्यक्ति जिसका सम्मान करता हो उसके साथ कभी दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता। यदि आप अपना, अपने शरीर का सम्मान करते हैं तो आप निश्चित ही से खानपान से, विचारों से कभी दूषित नहीं करेंगे। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम स्वतः आपका स्वभाव होगा। यह एहसास मात्र हमें अपनी परवाह करना सिखा देगा और नियमित व्यायाम स्वतः आपका स्वभाव होगा। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ मिस्टर शेषनाथ सिंह। ओनली 5 मिनट भाई जी, सॉरी।
ओम शांति। परमानंदनीय जोशी यारा जी, मंच प्रासीन प्रवक्तागण, बहनों एवं भाइयों, ये विषय ऐसा है, ट्रेजर्स ऑफ हेल्थ। मैं इंजीनियर होकर इस पर क्या बोलूं, इसी पर मैं बहुत देर से सोच रहा था और ज्यादातर चीजें जो मुख्य चीजें हैं वो डॉक्टर सविता बहन ने बोल ही दिया है। उन्होंने बताया स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो बहुत ही विस्तृत है, केवल आरोग्य या निरोग होना, कोई रोग नहीं होना ही स्वस्थ होना नहीं है। उसमें शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक स्वास्थ्य आगे बढ़ करके सामाजिक स्वास्थ्य और उसके भी आगे जाकर आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी इसमें सम्मिलित है। तो उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि जो हमारा मेडिकल साइंस है वो रोगों को उसका क्योर नहीं कर पाता है, केवल उनको रेगुलेट या कंट्रोल करता है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो मेडिकल साइंस पर पूरी तरह से आप निर्भर नहीं रह सकते हैं, और आप प्रिवेंशन लीजिए, ऐसी चीजें कीजिए, वो अपनी जीवन शैली ऐसी अपनाइए जिससे रोग हो ही नहीं, तो उससे बढ़िया चीज है ही नहीं। क्योंकि रोगों का निदान नहीं हो सकता है, रोगों को केवल नियंत्रित किया जा सकता है। और चूंकि समय कम है, मैं केवल थोड़ा सामाजिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा। हम देख रहे हैं समाज में तरह तरह के तनाव हैं, भ्रष्टाचार भी एक हम कह सकते हैं सामाजिक रोग है। इसके अलावा जो है आज के विद्यार्थियों पर, हमारे बच्चों पर इतना ज्यादा उन पर टेंशन डाल दिया गया है, उन पर इतनी जो है उनकी जीवन शैली इतनी तेज रफ्तार से चल रही है, सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक वो दौड़ते ही रह रहे हैं, वो भी एक रोग है। समाज में पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, तलाक हो रहे हैं, ज्यादा होने लगे हैं, ये सब जो देख रहे हैं ये सामाजिक रोग भी बढ़ रहे हैं। तो सामाजिक रोग जो बढ़ रहे हैं, इसके समाज वैज्ञानिक पहले से ही इस पर विचार करते हैं, लेकिन उनको और एक्टिवली जो है इस पर सोचना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में जो हमारे प्रमुख शास्त्रकार हैं मनु महाराज, उन्होंने इसके लिए बहुत ही एक बढ़िया धर्म की जो परिभाषा दी है, उसमें काफी चीजें ऐसी कही हैं जो कि हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। उन्होंने धर्म की परिभाषा लिखी है, या धर्म के जो 10 लक्षण दिए हैं, उन्होंने कहा है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। उन्होंने 10 चीजें गिनाई हैं जो धर्म के लक्षण हैं, उसमें कहीं ज्यादा भगवान देवी देवता पूजा पाठ और ये सब की बात नहीं की है। उन्होंने बहुत ही समझ में आने वाली चीजों को, जो हम आमतौर पर जो समझते हैं, उनकी बात की है। धृति मतलब धैर्य, जो अपन बात करते हैं धैर्य, बहुत ही अच्छा आचरण है धैर्य। धृति क्षमा, हम कहते हैं अगर आप क्षमा कर देते हैं तो आपका मन जो है शांत हो जाता है, आपको भी क्षमा लोग करेंगे। ये मान के चलिए कि आप अगर क्षमाशील हैं तो आपको, आपने कहीं गलती कर दी तो आपको भी क्षमा होगी। धृति क्षमा दमोस्तेयम, दम मतलब होता है इंद्रियों का दमन, जो चित्त की वृत्तियां हैं इधर उधर भागती हैं गलत कार्यों में, उन पर नियंत्रण करना। तो उसी तरह से धृति क्षमा दमोस्तेयम, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, उसमें कोई शक नहीं है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय, इसमें शौच भी है, शौच का मतलब है सफाई दफाई, जिसको हाइजीन बोलते हैं। शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। धीर बुद्धि, अच्छी सोच रहनी चाहिए। विद्या, अच्छी विद्या हो, ज्ञान अच्छा होना चाहिए। धीर विद्या सत्यम, सत्य भी आ गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर समाज में झूठ जठाई का काम होगा तो सामाजिक अस्वास्थ्य बढ़ेगा। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, अक्रोध क्रोध को कहते हैं कि सबसे बड़ा यम है, यम उसको बोलते हैं, यमराज है क्रोध, उससे दूर रहना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तो ये अगर अच्छे हम धर्म पर चलना चाहते हैं तो ये 10 लक्षणों को आत्मसात करें और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सो मैनी पीपल स्पेंड देयर हेल्थ गेनिंग वेल्थ and then have to spend their wealth to regain their health. इसीलिए समय के रहते हेल्थ का हम ख्याल कर लें। अभी प्रोग्राम की समाप्ति के लिए मैं हमारे चेयरपर्सन मिस्टर एनडी जोशियारा जी को आमंत्रित करूंगी। अब फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ गुजरात हिम्मतनगर।
मंच पर उपस्थित वक्तागण, भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य के खजाने के बारे में हमने काफी कुछ सुना, अभी मैं जो कुछ कहा गया है इसके बारे में रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अभी आपके कोई क्वेश्चंस है तो जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं अभी आपकी ओर से आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्नों के लिए आमंत्रित करता हूं।
नमस्कार, मेरा नाम रामराज राजौरिया है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं बेंगलोर में सर्विस कर रहा हूं। अभी मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और मल्टीनेशनल कंपनी में वैसे भी बहुत वर्क प्रेशर रहता है। आपको 8 घंटे आपके लिए सफिशियंट होते ही नहीं है। अब 8 घंटे नहीं है तो कम से कम आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, कभी कभी आपको 16 घंटा भी काम करना पड़ता है। इस काम करने के प्रेशर में आदमी अपनी इन लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता। तो लाइफ नहीं बैलेंस कर पाता तो उसका कैसा इफेक्ट बॉडी पे होता है, मैं उसके वो आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। क्या वो एक मेरे साथ एक घटना हुई, मेरे को कौन सा एक फीवर हुआ जो डेंगू फीवर होता है। मेरे को डेंगू फीवर हुआ 2012 में। 2012 में डेंगू फीवर होने के बाद में मेरा इम्यून सिस्टम एकदम गड़बड़ हो गया इतना, और इम्यून सिस्टम गड़बड़ होने के कारण बहुत कमजोरी हो गई। उसके बाद भी फिर भी कमजोरी होने के बाद भी काम तो करना है, क्योंकि वी हैव टू डिलीवर द एवरीवन, कंपनी विल पे ओनली फॉर द, यू हैव टू डिलीवर व्हाट एवर टारगेट गिवन ना, दैट यू हैव टू डिलीवर। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं जस्ट शेयर करूंगा तो इसलिए क्योंकि मैं जल्दी 60 में फिनिश करना चाहूंगा। वो अब ये मेरा इम्यून सिस्टम खराब होने के कारण, इतना प्रेशर होने के कारण मेरे को एक मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई जिसको बोलते हैं सोरियासिस। सोरासिस ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, आई थिंक मैडम विल एग्री ऑन दैट। उसका कोई इलाज नहीं है, न मेडिकल साइंस में, न आयुर्वेद में, कहीं पर भी उसका नहीं है सर। तो वो क्या हुआ, वो मैं प्रश्न नहीं सर, मैं मैं मेरे जीवन में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को ये आध्यात्म जीवन के कारण, मैं ब्रह्म कुमारी इसके लेक्चर सुनने के कारण
हेलो हाँ टाइम बहुत कम है। मैंने प्रश्न इनवाइट किया था, एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए इसके अलावा कोई यहां से बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। दोनों अलग चीज है। आपने 3 दिन से हम सुन रहे हैं, उसमें शायद आपको मालूम होगा कि शरीर और आत्मा अलग चीज है। शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उसका मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी तक हमने सुना कि कोई भी डिसीज है तो इसको दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, संपूर्ण मिटा नहीं सकते हैं। हेल्थ में देर इज ए मिसिंग डायमेंशन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। तो जब दवा नहीं लेते हैं और डिसीज क्योर हो जाता है तो रोग मिट गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम अभी रीडिस्कवरिंग ट्रेजर ऑफ हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई नई विचारधारा है जिससे अपने रोग संपूर्ण मिटा सके, इट इज देयर।
आप लोग बैठे रहिए, प्लीज जाइए मत, बस मेडिटेशन करके।
अभी इम्पोर्टेंट सजेशंस मैं दे रहा हूं चेयरमैन की ओर से, तो जरा ध्यान से सुनिए कि रोग कैसे होते हैं, रोग को मिटाने के लिए क्या करना है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने पूरा बता दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि रोग मिटाने के लिए कई थेरेपी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, अदर्स है। तो इससे रोग मिटता नहीं है लेकिन कंट्रोल होता है, ऐसा बोला। बात भी सही है, मरते तक दवा लेते रहो और हैरान भी होते रहो। जब सतयुग और त्रेता था तब कोई बीमार नहीं होता था। जब फायर की इन्वेंशन हुई, इसके बाद ही हम जो खाना खाते हैं वो मार के खाते हैं। पंचाल साहब ने बताया कि पहले फल फूल फल रस ये सब खाते थे तब कोई बीमार नहीं होते थे। अभी मेजर प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज टेंशन रिलेटेड डिसीज है। तो यहां से किसी को डायबिटीज हुआ है? डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल ही हो सकता है, मीट नहीं सकता है। और ये कंट्रोल रखने के लिए कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन ये डायबिटीज होता है इसका मूल रीजन है कि इनकी स्विच है वो बड़े आंतों में है। तो बड़े आंतों में जो स्विच है वो सिर्फ स्विच आप रिपेयर कर दो तो डायबिटीज खत्म हो जाए। तो ये स्विच क्या है? आपने कभी सोचा है कि आप सब व्हीकल्स यूज करते हैं तो इनकी हम रेगुलर सर्विस कराते हैं, बॉडी का कभी सर्विस कराया है? बॉडी का सर्विस कभी नहीं करवाया है। तो मेरे खुद का एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने बॉडी सर्विसिंग कराया। बॉडी सर्विसिंग माना इंटरनल सफाई। तो ये रोग मिटाने के लिए एक तो बॉडी सर्विस कराना जरूरी है, जैसे हम व्हीकल्स का सर्विस कराते हैं। दूसरा है कि आत्मा की सफाई, आत्मा की सफाई, आत्मा ऊपर जो कट चढ़ी हुई है तो ये मिटाना जरूरी है। तो ये आत्मा की और बॉडी की सर्विस हो जाए तो आपके जो शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, साइकोसोमेटिक डिसीज है, मैं जी ने बोला 90% साइकोसोमेटिक डिसीज है, तो ये सब रोग मिट सकते हैं। तो डायबिटीज के लिए जो मेन स्विच की मैं बात कर रहा हूं उसको एनिमा लेके साफ कर दीजिए और खाने की जो जीवन शैली है वो शैली भी बदलने की जरूरत है। इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है इसलिए ज्यादा मैं ना बोलूंगा, क्योंकि बहन जी भी बता रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है तो अभी यहां से कंप्लीट करते हैं। तो हेल्थ के बारे में कहें तो वेयर देर इज ए हेल्थ देर इज ए होप, वेयर देर इज ए होप देर इज एवरीथिंग। तो हम आशा रखें कि यदि होप है तो सब कुछ आ गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात पूर्ण करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप सभी का फिर से मैं एक बार धन्यवाद करती हूं। आपने अपना अमूल्य समय देकर सुंदर विचार हमें दिए और निश्चित ही आप सभी भी इन विचारों को अमल में लाएंगे और अपनी स्वास्थ्य को जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। वैसे योगीराज स्वामी रामदेव जी के अनुसार हंसी शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटाती है। स्वामी जी ने बताया कि हंसना एक बेहद अच्छा और सुरक्षित व्यायाम है। कई लोग अपना वजन कम करने के लिए अनेक तरीके अपनाते हैं, लेकिन अगर नियमित रूप से 10-15 मिनट तक खुलकर हंस लिया जाए तो निश्चय ही शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। हमेशा हंसते हंसाते रहना स्वस्थ जीवन का एक गुर है। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम फिनिश करते हैं और मैं बहन कविता बहन राजयोगा टीचर पानीपत उनसे कहूंगी कि हमें गहन अनुभूति डीप मेडिटेशन की ओर लेकर जाएंगे। अभी हम स्व में स्थित होकर परमात्मा की याद में खो जाएं, यही है ट्रेजर ऑफ हेल्थ। ओम शांति।
ओम शांति। अपने आप को कुछ क्षणों के लिए रिलैक्स करें और महसूस करेंगे अपने आप को कि हम सबके बीच में होते हुए भी एकदम अकेले हैं और एक बहुत सुंदर स्थान पर एक शांति के वातावरण में देखें स्वयं को। मेरे चारों ओर अति मनभावन सुंदर प्राकृति है, शांति का वातावरण है तो अपने से बात करें, बहुत समय हम औरों से बात करने में निकाल देते हैं, परंतु मुझे स्वयं से पूछना है कि मैं अपने तन और मन को कैसे स्वस्थ बना सकूं, अपने विचारों को बहुत सुंदर आलीशान बना दें, जिन विचारों का प्रभाव हमारे तन और मन पर अवश्य पड़ता है, इसमें सहयोगी बनाए उस सर्वशक्तिवान परम ज्योति निराकार शिव परमात्मा को, महसूस करें मेरे समक्ष शक्तियों का भंडार ज्योति स्वरूप शिव बाबा को, उस पिता परमात्मा से सर्व शक्तियों की पवित्र किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। जिन पवित्र और शक्तिशाली किरणों से मैं आत्मा स्वयं को शांत शीतल अनुभव करती हूँ, वो पवित्र किरणें मेरे मस्तक से होती हुई धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, एक एक अंग में प्रवेश कर रही है, मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाते हुए मेरे पूरे शरीर में पैरों तक वो पवित्र किरणें पहुंच रही है, मेरे मन की संपूर्ण सफाई हो रही है, जिससे मेरा तन और मन अति स्वस्थ हो रहा है। ये पवित्र और शक्तिशाली प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है, मेरे चारों ओर का वायुमंडल भी अति शक्तिशाली मन भावन बन रहा है, जिस वायुमंडल से अनेकों को भी अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा। मैं वो शक्तिशाली आत्मा हूँ, स्वयं को स्वस्थ बनाकर अनेकों को स्वस्थ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि का संबंध उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से है। लगातार मेरे अंदर शक्तियों का प्रवाह चल रहा है। मैं एकदम रिलैक्स हूं, शांत हूं। स्वस्थ हूं, ऐसा महसूस करते वापिस लौट आए अपने उस बाह्य जगत में। ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू सो मच। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शाम का सेशन है, पैनल डिस्कशन वर्क लाइफ बैलेंस डायमंड हॉल में है, 4 बजे। आप सभी को वहां पर आना है और अभी आप सभी भोजन के लिए जाएंगे।